नमस्कार, आप सभी लिसनर्स को गणतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। संविधान सभा में वो कौन था जिसने कहा, मुझे गर्व है कि मैं जंगली हूं, जिनके भाषण के बाद छा गया था सन्नाटा। जानना चाहते हैं पूरा वाक्य तो सुनिए ये पॉडकास्ट। संविधान सभा में जयपाल सिंह अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों में सबसे बड़ा जाना माना नाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर 19 दिसंबर 1946 को वो जो बोले, वो एक ऐतिहासिक भाषण के रूप में यादगार बना हुआ है। इसके कई कारण हैं। उनके भाषण में कुछ व्यंग था, उससे ज़्यादा थी उस समय की परिस्थितियों की पीड़ा जिसे वो अपने लहजे में व्यक्त कर रहे थे। शुरुआत इस तरह की, मैं उन लाखों अपरिचित आदिवासियों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं। भले ही दुनिया उनकी कद्र ना करे, वो भारत के मूल निवासी हैं। इन्हें पिछड़े कबीले, आदिम कबीले, जयायम, पेशा कबीले आदि ना जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। महोदय, मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैं जंगली हूँ, यही वो नाम है जिससे हम लोग देश के जिस भाग में रहते हैं पुकारे जाते हैं। हम लोग जो जंगलों में रहते हैं इस बात को बखूबी समझते हैं कि संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अर्थ क्या है। उनके इस अंतिम वाक्य से संविधान सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। आशंका उत्पन्न हुई कि अब वो क्या कहेंगे। एक उत्सुकता भी थी, इसीलिए कि जयपाल सिंह की राजनीतिक दुविधा से सदन परिचित था। ऊंची शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई थी। उन्होंने 1937 में आदिवासी महासभा बनाई थी जो बाद में झारखंड पार्टी बनी। वो झारखंड राज्य के लिए शुरू से ही आग्रही थे। इससे भी ज़्यादा उनका एक राजनीतिक इतिहास था जो उनकी छाया थी, जिससे सदस्यों का मन एक क्षण के लिए आशंका से भर गया। संविधान सभा को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा। जयपाल सिंह ने जहां छोड़ा था, जिससे लोग चौकन्ने हो गए थे, उन्हें राहत की सांस लेने का अवसर देते हुए वो बोले, मैं 3 करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। जैसे ही वो ये बोले कि संविधान सभा में खुशी से सदस्य अपनी अपनी मेजें थपथपाने लगे। जयपाल सिंह ने प्रस्ताव के समर्थन के कारण भी बताए, सबसे प्रमुख ये कि संविधान का लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव एक आशा जगाता है, हर्ष का संचार करता है। अगली बात उन्होंने उन लोगों के लिए कही जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक जंगली और आदिवासी होने के नाते से इस प्रस्ताव की कानूनी जटिलताओं और उलझनों को समझने की मुझमें आशा नहीं की जाती है, लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि और मेरी जनता की सामान्य बुद्धि मुझे ये बतलाती है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए और मिलकर संघर्ष करना चाहिए। ये कहकर वो नहीं रुके, अपनी ओर से आदिवासियों की वो पीड़ा भी व्यक्त की जो सदियों की उपेक्षा से पैदा हुई थी। हालांकि उपेक्षा की थी अंग्रेज़ों ने, लेकिन अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति का ही प्रभाव मानना चाहिए, जिससे उनके मन का रोष जो प्रकट हुआ उसका निशाना कहीं अन्यत्र था। जयपाल सिंह का ये कथन पूरी तरह सच है कि आप जंगली कौमों यानी आदिवासियों को लोकतंत्र की शासन व्यवस्था नहीं सिखा सकते हैं, आपको उनसे ही ये सीखना होगा। वो ऊंचे दर्जे के लोकतांत्रिक लोग हैं, उन्हें अनेक शिकायतें करनी थी और की भी, लेकिन उनका ये वाक्य भविष्य बोधक है। अब हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें अवसर की समानता होगी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन बयानों में विश्वास जताया जिनका संबंध आदिवासी हितों से था। संविधान सभा से पहले जय सिंह ने अनेक उतार चढ़ाव देखे और दिखाए थे। संविधान सभा की कार्यवाही से इसका पता नहीं चलता, उससे तो उनके उस भाषण से ही परिचित हुआ जा सकता है जो कार्यवाही में दर्ज है। उनका भाषण कितना महत्वपूर्ण था और उनके एक एक शब्द कितने वजनी थे, ये जानने के लिए उनकी वो जीवनी पढ़नी चाहिए जिसे जाने माने पत्रकार बलबीर दत्त ने लिखी है। बलबीर दत्त की लिखी जीवनी जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी से कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो जयपाल सिंह के भाषण का महत्व बढ़ा देते हैं। कई प्रश्न भी अपने आप खड़े हो जाते हैं। पहले उन तथ्यों पर बात करें। तथ्य ये है कि जयपाल सिंह की आदिवासी महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के कुछ माह बाद 1940 से ही खिचड़ी पकनी आरंभ हो गई थी। अगले एपिसोड में बताएंगे आपको राम बहादुर राय की किताब के वो अनसुने किस्से जो सिर्फ किताब में लिखे गए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।